अदनायपि ते धन्यः साधवो गृहमेधिनः यद्गृहा हि अर्हवर्य यद्गृहा हि अर्हवर्य अम्बुतेना भूमेश्वरा अधनायपि ते धन्या माधवो गृहमेधिनः यद्गृहा हि अर्हवर्याम्बु तेन भूमेश्वरावरा अधनायपि ते धन्या माधवो गृहमेधिनः यद्गृहाय अर्प अम्बु अम्बु तेन भूमेश्वरावरा अधनापि ते धन्या साधवो गृहमेधिनः तेन भूमेश्वरावरा अधना निर्धन अपि यद्यपि ते वे धन्यः धन्य है साधवः साधुपुरुष गृहमेधिनः गृहस्थलो यद्गृहा जिनके घर ही निश्चय ही आर्यवार्य अत्यंत पूज्य अम्बु जल पीना घास भूमि स्थल ईश्वरा स्वामी अवरा दास अनुवाद वह निर्धन तथा गृहस्थ व्यक्ति धन्य हो वह निर्धन तथा गृहस्थ व्यक्ति धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं और स्वामी तथा उसके सेवक जो अतिथियों को जल आसन तथा स्वागत सामग्री प्रदान करने में व्यस्त रहते हैं धन्य है और वह घर भी धन्य हो जाता है। बोलिए वह निर्धन तथा गृहस्थ व्यक्ति उत्पन्न हो जाता है, जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं, वह स्वामी तथा उसके सेवक जो अतिथियों को जल आसन तथा स्वागत सामग्री प्रदान करने में व्यस्त रहते हैं, धन्य है और वह घर भी धन्य हो जाता है। तात्पर्य, यदि कोई मनुष्य अधिक धनी नहीं होता तो वह धन्य नहीं है, ऐसा है ना? भौतिक जगत का ऐसा ही सोच है, यदि कोई मनुष्य अधिक धनी नहीं होता तो वह धन्य नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन के प्रति आसक्त होता है तो वह धन्य नहीं है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन के प्रति अधिक आसक्त अत्यधिक आसक्त होने से वो धन्य नहीं है, क्योंकि परिवार के प्रति हम अधिक आसक्त रहेंगे तो हमको तो कभी भी परिवार छोड़ के चलना पड़ेगा, है ना? आज हम परिवार को छोड़ने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा जिम्मेदारी है। ये सब जिम्मेदारी कैसे कौन निभाएगा, है ना? बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तो वह कहते थे गृहस्थ जीवन मतलब जिम्मेदारी का जीवन, विदेश में ऐसा जिम्मेदारी का जरूरत नहीं है जैसे इंग्लैंड में, अमेरिका में। भविष्य में क्या होगा, भारत का लोग सोचते हैं मेरा बुढ़ापा में पैसा चाहिए, इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, कौन देखेगा। लेकिन उस सब देश में उसे चिंता कुछ नहीं है, सरकार पैसा देगी, अस्पताल है, कोई चिंता नहीं है। तो भारत में चिंता है भविष्य में क्या होगा, कौन देखेगा, कैसे चलेगा। दो बात कहते थे कि आप उसी देश में दो बात गए और देखा कि जिम्मेदारी विहीन जीवन है, जो कुछ करो। विदेश में कहावत है, ये जीवन में एक ही बार मिला है, जितना संभव भोग कर लो, है ना? कि मनुष्य जीवन एक ही बार मिला है, जितना संभव है भोग कर लो, यही है लोग का मंत्र। लेकिन भारतीय जीवन है, एक ही जीवन नहीं है, हम लोग का जीवन बार बार होता है, जन्मांतर है, और पूर्व कर्म के अनुसार वर्तमान शरीर मिला है, फिर वर्तमान के अनुसार मिला के फिर परवर्ती जन्म होगा। ऐसे ही जिम्मेदारी का पता आ ही जाता है भारतीय जीवन में। तो जो यदि कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन के प्रति आसक्त तो होता है वह धन्य नहीं है। परिवार जीवन में केवल गृहस्थ होना ही काफी नहीं है, गृहस्थ के बाद भी और जो आश्रम है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, और संन्यास तक पहुंचना चाहिए ताकि जीवन का पूर्णता प्राप्त होना, मनुष्य जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना चाहिए। लेकिन आजकल के जीवन में ब्रह्मचर्य का उतना महत्व नहीं है, विदेश में तो ब्रह्मचर्य को कोई महत्व देता ही नहीं, वो लोग विश्वास नहीं करता है कि ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। केवल बचा है गृहस्थ जीवन और मत दम तक गृहस्थ ही रहता है, तो ये जीवन अधूरा है। भारतीय संस्कृति अनुसार चार आश्रम होना चाहिए ताकि पूर्ण जीवन लाभ होगा संन्यास के माध्यम से। तो ज्यादा गृह के प्रति आसक्त रहते हैं तो वो जीवन सफल नहीं है, धन्य नहीं है। किंतु साधु पुरुष निर्धन अथवा गृहस्थ के घर जाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो इसी जगह में पढ़ा था मैं, तो बात देखते हैं कि प्रचारक वैष्णव भक्तों को गृहस्थों के घर में प्रसाद लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ऐसे कहते हैं कि साधु पुरुष निर्धन अथवा गृहस्थ के घर जाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। महंत स्वभाव चारित्र कामर कोनो कार्य नाय तो जानकार घर, महंत स्वभाव यही चारित्र कामर पापियों को उद्धार करना ही महंतों का स्वभाव है। कोनो कार्य नाय तो जानकार घर, कोई काम नहीं है कोई जरूरत नहीं है फिर भी गृहस्थों का घर जाते हैं। गृहस्थों के घर जाते जाके क्या करेंगे, खाली खाने या सोने के लिए नहीं है, वहां जाके उन लोग को थोड़ा परमार्थिक जीवन में जगाना, परमार्थिक जीवन में जगाना ही साधु का उद्देश्य होना चाहिए ताकि उनका परमार्थिक जीवन में उन्नति हो, ना कि जाके खाएगा और सोएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नियम है कि गृहस्थ के घर में जाके ज्यादा समय नहीं रहेंगे। सुखदेव गोस्वामी जैसे वहां बताया है, जब तक गाय धोने के लिए समय लगता है तब तक वो खड़ा रह सकता है। हो सकता है गृहस्थ गाय धो रहा है तो उसके बाद ही तो भिक्षा देंगे, उस समय तक रह सकता है, इतना ही। तो ऐसे ही साधु लोग का गृहस्थ के घर जाना चाहिए लेकिन दूसरा किसी मतलब से नहीं, केवल और उसके लिए खुद का परमार्थिक जीवन ठीक ठाक तो रखना ही पड़ेगा। खुद का साधना अगर सही नहीं है तो गृहस्थ के घर में जाके उनके सामान देख के सोच आ सकता है, मेरा भी अगर ऐसा घर होता है, इसी से शुरू होता है गृहस्थ भावना। ऐसे ही हम लोग का सब जीवन में गृहस्थ भावना भी घुस सकता है अगर हम लोग साधना में स्ट्रांग नहीं है तो। इसलिए अपना साधना को बहुत ही ठीक ठाक रखना पड़ेगा, तभी गृहस्थों के साथ मिलजुल के बात करते भी करते हुए भी अपना मार्ग में सही रहेंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो घर का स्वामी तथा उसके सेवक धन्य हो जाते हैं, क्योंकि ये साधु पुरुषों के चरण प्रक्षालन के लिए जल प्रदान करते हैं। हमने देखा गृहस्थों के घर में जाने से उन लोग अपना घर अपना बिस्तर छोड़ देते हैं हम लोग के लिए, वो लोग कहीं जाके कोने में सो जाते हैं। उनका जो प्रधान जो सोने का जगह है वो छोड़ देते हैं, बहुत देखा। तो ये बहुत बड़ा सम्मानीय विषय है और इस सम्मान को बनाए रखना भी साधुओं का बहुत जरूरी है, ना कि इतना सम्मान दिया आज जाके कुछ गड़बड़ करके चलाया तो तब तक गड़बड़ हो जाएगा सब। इसलिए साधुओं को बताते हैं साधु साधा साधु साधा सभी को साधन जाना पड़ता है। तो साधु आने से क्या करते हैं, साधु पुरुषों के चरण प्रक्षालन के लिए जल प्रदान करते हैं। यही नहीं है, जो परमार्थिक जीवन उन्नति करना चाहते हैं उन लोग के लिए बोलते हैं कि तीन चीज करना है, भक्त पद धुलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन साधनेर बल। भक्त पद धूलि, भक्तों का चरण धूल, और भक्त पद जल, भक्तों का चरण धूल के जो जल होता है, और भक्त भुक्त अवशेष। भक्त लोग जब प्रसाद लेते हैं उसके बाद जो जूठन छोड़ते हैं वो, ये तीन चीज साधन के लिए बल देने वाले हैं। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, और भक्त भुक्त अवशेष। तो ये तीन चीज, इसका मतलब काफी अनुगत्य, काफी विनय भाव से, ना कि मन में नहीं चाहता है इसका जूठन खाए, चलो साधु का जूठन खाना उचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई शुद्ध भक्त मिलता है, सही भक्त मिलता है, तो उनका जूठन खाने से भक्तों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसे शुद्धता बढ़ता है। प्रभुपाद जी का जूठन खाने के लिए भक्त लोग तरसते थे, आजकल भी हम लोग का गुरुदेव का जूठन खाने से बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे ही शुद्ध भक्त का जूठन हम लोग का पाने के लिए प्रयास रखना चाहिए। तो साधु आने से क्या करते हैं, साधु पुरुषों के चरण प्रक्षालन के लिए जल प्रदान करते हैं। केवल जल ही नहीं प्रदान करते हैं, उन लोग बैठा जाते, मैंने देखा बांग्लादेश, बांग्लादेश में, पश्चिम बंगला में, बहुत जगह में, उड़ीसा में भी है, और बड़ा सा थाली लेके आते हैं, और एक बड़ा सा लोटा जल भर के, साफ सुथरा लोटा ला के उस थाली में पैर रख के बढ़िया से धोल के उस जल पीते हैं। एक बार मैं जिंदीपुर गया था, तो इसके पहले ऐसा नहीं था, मेरा तो अनुभव नहीं था, वहां जाके देखा ये सब शुरू कर दिया है। मैंने बोला हम नहीं करेंगे ऐसा, जब ऐसा बोला तो वो लोग गुस्सा हो गया, कैसे साधु है आप लोग, चरण का चरण धूल के जल नहीं देंगे तो हम लोग का उद्धार कैसे होगा। इतना हम लोग का उद्धार के लिए क्या है, क्या है, यही तो उपाय है, और आप लोग चरण धूल नहीं देंगे, कैसे साधु है। सब स्थिति होता है, तो लेकिन जो साधु का चरण धुलेंगे उस साधु को भी तो सही साधु होना पड़ेगा। साधना में काफी ऊपर रहना पड़ेगा, नहीं तो उनका चरण धुल के सब उनका शक्ति सब निकल देंगे, बस दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए किसी को जूठन देना भी एक मामला है, क्योंकि उस साधु का शक्ति, साधु का अशुद्धता उसके भीतर जाता है। तो साधु को अच्छा, और उन्हें आसन देते हैं बैठने के लिए, और उनके स्वागत की अन्य वस्तुएं देते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई साधु पुरुष किसी साधारण व्यक्ति के घर जाता है तो उसके आशीर्वाद से घर धन्य हो जाता है। अतः यह वैदिक पद्धति है कि अपना घर पवित्र करने के लिए किसी साधु पुरुष को आमंत्रित किया जाता है। यह पद्धति आज भी भारत में प्रचलित है। अतः साधु पुरुष जहाँ जहाँ कहीं भी जाते हैं गृहस्थ उनका सत्कार करते हैं और बदले में उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः संन्यासियों का कर्तव्य है कि ये गृहस्थों पर अनुग्रह करने के लिए भ्रमण करते रहे, क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों के प्रति नितांत अनभिज्ञ होते हैं। सामान्य लोग का आध्यात्मिक जीवन के बारे में अनुभव नहीं रहता है, उन लोग को ज्ञान प्रदान करने के लिए साधुओं का उचित है। वैसे ही अगले जमाना में गृहस्थों का घर गांव में होते थे और उस घर में भिखारी भी जाते हैं, साधु भी जाते थे और साधु लोग जाके उनका कल्याण करते थे। तो लेकिन आजकल का क्या हो गया, शहरों में बड़ा बड़ा इमारत है, 10 मंजिला 20 मंजिला का इमारत है और इमारत में प्रवेश करने का अधिकार साधु का नहीं है। सामने दरवान बैठे हुए हैं, कौन घुसेगा? अगर किसी के साथ कोई संपर्क नहीं है तो अगर किसी के साथ संपर्क है, फोन नंबर है, तो फिर उनके परमिशन अनुसार अंदर जाने देते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, साधुओं का उस अपार्टमेंट में प्रवेश वर्जित हो जाता है, तो साधु लोगों का संग से वो लोग वर्जित रह जाते हैं, साधु संग नहीं मिलेगा। और साधु भी आजकल बहुत प्रकार का हो गया है, बहुत सारा तथाकथित साधु हो गया है, जिसके कारण साधु लोग का मर्यादा भी घट जाता है और कौन से साधु को विश्वास करेंगे, कौन सा को नहीं, कौन सही साधु है कौन नहीं है, के निर्णय करना भी मुश्किल हो जाता है। ये साधु समाज का थोड़ा भ्रम बना है और ऐसा कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है किसको साधु कहा जाएगा किसको नहीं, कोई मानदंड तो है नहीं। मैंने देखा कुंभ मेला में हो, माघ मेला में, गंगासागर मेला में साधु हजारों साधु जाते हैं और हर एक का वेश अलग अलग है, अलग अलग प्रकार का माला पहने हैं, कोई राख लगा लिया है तो कोई और कुछ अलग अलग प्रकार का ड्रेस बनाया है, इसका जैसा खुश है। और ज्यादातर लोगों को पता नहीं है भगवान कौन है, पूछने से भगवान कौन है बोल नहीं सकते। इसीलिए इंसान भ्रमित होते हैं और ऐसे जब थक जाते हैं तथाकथित साधुओं से वो लोग का विश्वास हट जाता है और वो कहते साधु ने सब गलत है। तो इसलिए साधुओं को बहुत ही सावधान से चलना पड़ेगा। यह तर्क किया जा सकता है कि सभी गृहस्थ इतने धनवान नहीं कि ये बड़े बड़े साधु पुरुषों का सत्कार कर सके, क्योंकि उनके साथ उनके ये बड़े बड़े साधु पुरुषों का क्योंकि उनके साथ उनके शिष्य भी रहते हैं, बड़े बड़े साधु के साथ शिष्य लोग भी रहते हैं। यदि कोई गृहस्थ किसी साधु पुरुष को आतिथ्य प्रदान करता है तो उसे उनके साथ वालों का भी सत्कार करना होता है, ये तो नियम ही है। जैसे किसी के घर में गुरु महाराज जाएंगे, गुरु महाराज अकेला नहीं जाएंगे, साथ में सब गुरु भाई लोग जाएंगे, गुरुवान लोग जाएंगे, उन लोग का भी इंतजाम करना पड़ेगा और उस गृहस्थ का ऐसा कैपेसिटी नहीं है तो मुश्किल है ना। तो शास्त्रों में बताया गया है कि दुर्वासा मुनि के साथ कितना शिष्य रहते थे? 60,000 शिष्य रहते थे। आज भी उनके सत्कार में कनिक भी त्रुटि हो जाती तो ये अत्यंत त्रुटि हो जाती। और कभी कभी अतिथि सेवी को सब भी दे देते थे, सभी का सत्कार करना मुश्किल है। इसीलिए दुर्योधन पांडवों के पास दुर्गा से मुनि को ही भेज जाता है। पांडव लोग उस समय वनवास में थे और देवी द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था। उस अक्षय पात्र से जितना जरूरत जितना कुछ भोजन निकल सकता था, लेकिन अंत में जब द्रौपदी जी खा लेती है तो बस समाप्त हो जाता है। ये विषय ये सूचना उनके पास था तो उसको पता था किस समय द्रौपदी जी का भी भोजन हो जाएगा, तो उदासमी को उसी समय भेजा गया ताकि जाके उनको भोजन नहीं मिलेगा तो दुर्वासा मुनि साप दे देंगे। अब्बास उनका सत्यनाश हो सकता है। बाकी दुर्घटना आप लोग जानते हैं। तो उसमें सब लोग का ही साप देना उचित नहीं है। तो सबने से आम आदमी का क्या होगा? गलती तो हो सकता है, किसी का शक्ति है किसी का नहीं है, तो कुछ सब लोग इतना गुस्सा हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? जो भी है वस्तुतः हर एक गृहस्थ चाहे उसकी स्थिति या आर्थिक दशा कैसी क्यों ना हो भक्तिपूर्वक साधु पुरुषों का सम्मान कर सकता है और उन्हें कम से कम पानी तो पीने को दे ही सकता है, क्योंकि पानी सर्वत्र प्राप्त है। भारतवर्ष की प्रथा है यदि अचानक कोई सामान्य व्यक्ति भी आ जाए तो यदि गृहस्थ उसे भोजन नहीं दे सके तो पीने का जल तो देता ही है। अच्छा अगला जमाने में नियम था गृहस्थ अपने घर में भोजन बना के सामने का दरवाजा में आके चिल्ला के बताएंगे, क्या कोई भूखा है तो आइए भोजन करके जाइए यहाँ से। भोजन कराने के लिए बुलाते हैं लोग को, आइए। आजकल का जीव जमाना में एक दिन भी एक लोग को भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि अपना घर में घर के दरवाजे में खड़ा होकर बुला रहे हैं पुकार रहे हैं आइए, किसी का कोई भूखा है तो आइए। ऐसे ही प्रत्येक गृहस्थ अगर करेंगे तो भूखा लोग रहेगा ही नहीं, है ना। और ये प्रथा हर वर्ष में था और ऐसे आजकल भी व्रत में है। इसी जगह मैं काल भी सुन रहा था अरविंद के पास और मैं खुद देखा, हम जब ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे 2000 में तो एक दिन हम लोग सोचा माधुपुरी करेंगे तो, और हम लोग के साथ तो बहुत लोग रहते हैं ना, एक दो नहीं। मैं उस घर में प्रवेश करके देखा एक माता जी इतना सारा चापाती बना रही है, चूल्हा है लकड़ी का चूल्हा है बना के इतना ऊंचा करके चापाती बना के रखी है। और उसी समय हम पहुंच गए और पहुंचते ही माता जी दे दिया चपाती, साथ ही साथ और भी 10-20 लोग घुस दिया। वो लोग सब चपाती बांट दिया बहुत खुश, बहुत खुश। ऐसा नहीं कि हम लोग का सबसे पहले खा लिया है फिर मुझे आधा करना पड़ेगा, फिर मुझे चपाटी बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इतना खुश है सबको खिला के। ऐसे ही एक बार हमारे को आया था, अपने गोद परिक्रमा के लिए जा रहा था, साथ में छह सात डॉक्टर थे, महापुरुष से आया था उस समय। तो एक लोग आकर बोला, अरे आप लोग महापुरुष से आया ना जी, तो क्या आप लोग गोद परिक्रमा जा रहे हैं जी? एक काम करिए, परिक्रमा करके आके मेरा घर में थोड़ा भजन कर लिया। हम लोग सोचा कि वो कहाँ रहेगा, हम कहाँ रहेंगे, क्या पता है। तो परिक्रमा करके जब वापस आया, किसी के भीतर वो साइकिल से आके हाजिर, चलिए हमको फिर पकड़ लिया। तो उन्होंने बोला कि हम मायापुर गए थे, जाते उस समय लोटस बिल्डिंग में रहा और मेरा बच्चा का बुखार हो गया था, 9 बजे घर छोड़ना था, लेकिन आपने बोला नहीं नहीं आप रहिए, कोई असुविधा नहीं है शाम तक। हाँ, तो मैं रहा, वहाँ से आया करके घर में ले गया, जाके बहुत सुंदर गद्दी बना के रखा है, साफ सुथरा, खुश हो जाइए आप लोग। हम थके हुए थे, सो गए और उसके बाद भोजन करवाया, पेट भर के भोजन करवाया। उसके बाद हमने बोला थोड़ा दक्षिणा लीजिए, किसी प्रकार से लीजिए, नहीं हम लोग का नियम नहीं। ब्रजवासी लोग का हृदय में अभी भी ये भावना है, भारतीय संस्कृति का जड़ है। तो भारतीय संस्कृति में किसी को कोई भोजन करा सकते हैं तो खुद को धन्य मानते हैं। आज भी हम लोग का मंदिर में जैसे कई भक्त लोग हैं जो भक्तों को खिलाने के लिए पैसा देते हैं, इस मंदिर में, इसका वृंदावन में किसी को भोजन कराना बहुत बड़ा पुण्य का बात है। पुण्य हम नहीं करते हैं, हम पुण्य नहीं चाहते हैं, प्रसाद बनते चाहते हैं, ताकि प्रसाद खा के सबका पाप दूर हो जाएगा, इससे बड़ा जनहित क्या हो सकता है। तो भारतवर्ष की प्रथा है कि यदि कोई अचानक सामान्य व्यक्ति भी आ जाता है, यदि गृहस्थ तो उसे भोजन नहीं दे सके तो पीने का जल तो देता ही है। यदि जल भी ना हो तो बैठने को आसन या चटाई भी दे, यदि चटाई भी ना हो तो भूमि को झाड़ कर उसी पर बैठाए। यदि इतना भी ना कर पाए उसे अपने दीनहीन दशा पर तरस अपनी तरस आनी चाहिए और समस्त परिवार, पत्नी तथा संतान सहित पर प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार वह किसी भी अतिथि को, चाहे वह साधु पुरुष हो, राजा हो, प्रसन्न कर सकता है। तो ऐसे बताते हैं कि कोई अगर शत्रु भी घर में आते हैं तो उनका आचरण ऐसा होना चाहिए कि उनको ऐसा महसूस होगा कि ये मेरा शत्रु है ही नहीं। कम से कम बताया है, कम से कम स्वागत करना चाहिए मधुर वचन से। वचन का दरिद्रता, वचन के लिए दरिद्रता होना नहीं चाहिए। वचन में आइए तो मुझे बैठिए करके बिठाना और मधुर वचन से बात करना, इसमें कौन पैसा लगता है? पैसा लगता है कोई? बहुत जोर लगता है वो भी नहीं, तो इतना तो कर ही सकता है। करते भी हैं बहुत लोग, मैंने देखा बहुत लोग हैं, अभी किसी पढ़ाया नहीं। तो ऐसे अतिथि परायण का है भारत का एक खासियत, जो कि विदेश में दो बार बोलते हैं, विदेश में अगर कोई अनजान लोग घर में प्रवेश कर गया है किसी प्रकार से तो उसको गोली मार दिया जाता है, और मारने से कोई दोष नहीं है। एक बार दो बार इसी ब्रज में भ्रमण कर रहे थे शिष्यों के साथ, जाते जो भी खेत के भीतर ही चल रहे थे, तो इस समय एक खेत वाला का खेत के ऊपर से चल गया, तो खेत वाला भगवान के आगे साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं भक्तों को, गोपाल को, मेरा खेत धन्य हो गया है, मेरा खेत धन्य हो गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ मेरा खेत में फसल नष्ट कर दिया है, डाटा शुरू कर सकता है, गाली दे सकता है, लेकिन इस ब्रज में जैसे ही आचरण करते हैं लोग, इससे बहुत कुछ सीखने का है। हरे कृष्ण। चलिए आज श्रीमती ललिता देवी का आविर्भाव दिन है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चला है। ललिता देवी है सुमति दादानी की सबसे घनिष्ठ शक्ति, जिन्होंने दादानी की मनोभाव पूरी तरह समझती है, कम से कम प्रेम के विषय में दादानी की मनोभाव क्या है, क्या करने से दादानी खुश होंगी, इस सब विषय में ललिता देवी सबसे स्पष्ट है। तो बताया गया है कि इस समय ललिता देवी का उम्र सुमति दादारानी से 27 साल ज्यादा, भले ही उनका असली जो उम्र, जो नित्य उम्र है, 27 साल भी पता चला, असली उम्र है उनका 14 वर्ष 8 मास और 27 दिन। भूल लिखा है, तो 27 साल का उम्र ज्यादा होना संभव नहीं है, ऐसे छोटी कैसे होंगी, तो माँ जैसे होंगे। तो उनकी असली उम्र है 14 वर्ष 8 मास 27 दिन, और उन्होंने बिना बजाने उनका सबसे प्रिय है, और उनका स्वभाव है थोड़ा वाम स्वभाव, मतलब कट्टरता है उन्हें। उनका पिताजी के नाम है विशोक, माताजी है शारदी देवी, और उनका पति का नाम है भैरव, जो कि चंद्रावली की पति का मित्र है, चंद्रावली ये छोटी है, चंद्रावली और राधारणी में कंपटीशन, चंद्रावली का एक ग्रुप है, राधारणी का एक ग्रुप है, उस चंद्रावली का पति की मित्र है पिता, पति भैरव, और इनका वस्त्र वर्ण जो शरीर का रंग है गोरे चना का रंग है, उजला पीला रंग है। और उनका ड्रेस कपड़ा है मोर पंख जैसे, हाँ कोई चंद्रवली की पोती की नाम है गोवर्धन गोप। ये दुर्गा देवी की जो कुंज है ये है राधा कुंज के उत्तर तरफ, इस कुंज का नाम है ललिता नंददा। ललिता को जो आनंद देने वाला है, और ये कुंज हीरा जवाहरातों से बना हुआ है, बहुत सुंदर बहुत कीमती। और इसके बारे में एक छोटा सा लीला है, एक बार नारद मुनि का काम ही है यहाँ वहाँ कुछ मजा करने के लिए, तो राधा और कृष्ण दोनों झूला में झूलेंगे। तो विष्णु भगवान पहले पहुंच गए, राधा रानी नहीं पहुंची, और वो ललिता कुंड के बगल में ललिता देवी कृष्ण के लिए कौन फूल से माला दुख रही माला बना रही है, तो कितना बड़ा बनाना पड़ेगा कृष्ण के लिए सही होगा या नहीं। तो नारदी जाके देखा कि ललिता देवी माला बना रही है, तो ललिता काम करो कितना बड़ा चाहिए, कृष्ण यहाँ पे है जाके झुक लो ना, झुक के बनाओ तो ठीक होगा ना। तो ये पहले तो झिझक रही थी, फिर से बोला तो किया जाके झुक लिया। तो उस समय नारद बोल रहे हैं प्रभु ललिता जी के साथ आप झूला में बैठ लीजिए। ललिता देवी राजी नहीं हो रही है, तो फिर से नहीं बहुत सुंदर दिखेगा, तो मेरे बहुत इच्छा है देखने का। तो ललिता देवी फिर से ठीक है, तो और भक्त को समझाए देखो नारद को खुश करने के लिए तो इससे कोई मजा नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो ललिता देवी कृष्ण के साथ झूला में बैठी है और नारद मुनि कृष्ण से झूला रही है। और ऐसे ही इसके बीच में और ललिता देवी में कुछ बातचीत होने लगे, और इसी के भीतर नारद मुनि क्या किया, राधा रानी को सूचना दे दिया। राधा रानी भाग भाग के आई, आके झुकके आगे को लग गई, कैसा बात है। तो ललिता देवी मुश्किल में, तो फिर से कृष्ण भगवान को समझाना पड़ा कि नहीं नहीं ऐसा बुरा मत मानो, ये नारद का चक्कर है ये। तो ऐसे ही जिला नारदी कराते हैं हरे कृष्ण। और किसी का कोई ललिता देवी के विषय में कोई जिला का पता है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण, शुभ भगवान की जय। भक्तवृंद की जय।